दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। ओम शांति डियर बॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे सभी को। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको इस सुंदर प्रोजेक्ट में एक बोनस के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि सभी के इतने सुंदर विचारों को सुनने के बाद मुझे ख्याल आया कि इन सभी विचारों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। पिछले कुछ हफ्तों से हम इन विचारों को सुन रहे हैं, तो आपका स्वागत है बॉडी बहन। तो आपसे सुनना भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे विषयों पर आप बहुत अच्छी रीति से अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक तरीका है सोचने का, विचार प्रकट करने का। तो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। तो आपसे मेरा पहला सवाल है, जब से आपने इन इंटरव्यूज को सुनना शुरू किया है, हम अपने मन को स्वर्णिम युग में ले जा रहे हैं। हम सभी प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रत्येक बात का विवरण जानना चाहते हैं, सीइंग और बीइंग की पूरी प्रक्रिया को हम जानना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? जब से हमने इन सभी इंटरव्यूज को सुनना आरंभ किया है, तो आपके मन में इसकी क्या प्रतिक्रिया है? बॉडी बहन, मैं पूरी तरह से अपने दोस्तों को सुनने का आनंद ले रही हूँ। बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी नहीं पूछती, तो इसलिए उनको इन सभी बातों के लिए सुनना बहुत रोचक हो जाता है। और परिणाम स्वरूप, और मुझे पक्का विश्वास है सभी श्रोताओं को भी ऐसा लगता होगा कि वो प्रश्न सुनने के बाद हम वही प्रश्न खुद से भी पूछते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या दूसरों के विचारों और अनुभवों से हमारे विचार और अनुभव मेल खाते हैं, और कहां उनके विचार और अनुभव हमारे विचारों से अलग हैं। और इससे मुझे ब्राह्मण परिवार की सुंदरता का फिर से ख्याल आता है कि हर कोई अपने आप में विशिष्ट है, और हर एक का अपना अनुभव है, और यह संपूर्ण रीति स्वीकृति योग्य है। एरिक भाई, बिल्कुल, यह संपूर्ण रीति स्वीकृति योग्य है। हाँ, अपनी इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे इस बात का खुलासा करेंगे कि सभी के व्यक्तिगत विचार हैं, ये संस्था की ओर से प्रामाणिक आधिकारिक कथन नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, बल्कि ये व्यक्तिगत अनुभव है। तो जब आप अपने स्वयं के स्वर्णिम युग के अनुभवों को देखते हो, तो इन विचारों और सवालों ने आपके मन में किस प्रकार के विचारों को उत्पन्न किया है? क्या स्वर्णिम युग के बारे में आपको एक नई अवधारणा या नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है? बॉडी बहन, मैं अपनी यात्रा की ओर देखती हूँ। हम इस मान्यता में थे और हमने स्वर्णिम युग के इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार किया था, परंतु धीरे धीरे, शायद बाद में अपनी यात्रा के दौरान, हमने उसे वस्तुतः नहीं लिया। और मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने आरंभ ही विपरीत किया। शुरुआत में स्वर्णिम युग के विचार के बारे में एक प्रतिरोध था, क्योंकि मेरे आदर्श के साथ उसका मेल नहीं हुआ। मैं इस बात पर ध्यान एकाग्र कर रही थी कि जैसे हमारे स्वभाव का और प्रकृति का आपस में समन्वय हो, तो ये विभिन्न परिधानों का, सोने के ताज का, गहनों का और बहुत सारे धन का जो विचार, तो ये सब मेरे लिए अस्वीकार्य था, बल्कि मुझे संगम युग का विचार बहुत पसंद आया। और फिर से हम उसी बात को याद करते हैं कि असंख्य प्रकार की विविधता, ये ख्याल बहुत सुंदर है। और विचित्र बात यह थी कि मैं बहुत असंतुष्ट और अनिच्छुक प्रकार की भी की थी। मैंने प्रत्येक सिद्धांत को चुनौती दी, लेकिन एक दिन मुरली सुनते वक्त बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसने सचमुच मुझे बाबा का लाडला बना दिया। और बाबा ने उस मुरली में कहा कि स्वर्णिम युग में आप सभी रॉयल बुद्धू होंगे, और वास्तव में इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। और वही समय था जब मेरी हद की बुद्धि ने धुंधला सा अस्थिर सा स्वर्णिम युग का पहला अनुभव प्राप्त किया। वह बहुत उत्तेजित करने वाला नहीं था, परंतु एक बात हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम सभी वहाँ नहीं होंगे, लेकिन वहाँ जाने का हम चयन कर सकते हैं, कि हर बात एक समान थी, किसी बात की तुलना नहीं थी। तो उस समय के बाद स्वर्णिम युग की मुझे एक अलग प्रकार की समझ हासिल हुई। तो जैसे बाबा मुझे कह रहे थे और बाबा ने मेरे मन को स्वर्णिम युग की सुंदरता और उस अनुभव के लिए खोल दिया। एरिक भाई, तो वॉडी, इस बारे में आपको हमें और अधिक स्पष्टता से समझाना होगा। क्या होता है जब हम बिंदुओं के समूह से बुद्धुओं का समूह बन जाते हैं और फिर बिंदुओं का समूह बन जाते हैं? यह संसार के हर रहस्य को समझा देता है। आपने सच में एक बहुत रोचक विषय को छुआ है। तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या सभी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने उन सभी सिद्धांतों को अपने एक नए दृष्टिकोण से देखना आरंभ किया? क्या रहा इस पूरी प्रक्रिया में? वॉडी बहन, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, और जब मैं ज्ञान में आई तो उस समय एक बेहतर संसार की बात कही जाती थी, और आवश्यक नहीं है कि वो स्वर्णिम युग हो, लेकिन जिस संसार में हम वर्तमान समय रह रहे थे उससे एक बेहतर संसार की बात कही जाती थी। और फिर निसंदेह रूप से धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि जो भी वर्तमान है उसका संपूर्ण रूप से परिवर्तन होगा, और पुराने प्रकार के तरीके और हमारा व्यवहार, सब प्रकार की इन पुरानी बातों को अब खिड़की से बाहर निकलना होगा, ताकि एक नया परिदृश्य दिखाई दे सके। एक बार शुरुआत में भी नहीं कहेंगे, बल्कि मेरे ज्ञान के 8 वर्ष पूरे हो चुके थे, मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे साक्षात्कार जैसा हुआ। एकदम साक्षात्कार भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ साक्षात्कार जैसा दिखाई दिया। और एक कमरे में मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, और ऐसा लगा कि वे वही लोग हैं जो भविष्य दुनिया के हैं, और वहाँ अपेक्षित सामंजस्य भी था। और तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया, और मैं अपने साक्षात्कार में पूरी तरह से जागरूक थी कि ये कोई पुरुष है, लेकिन मैं एक स्त्री की वेशभूषा में थी। लेकिन मैंने देखा कि इस मनुष्य के इस कमरे में प्रवेश करते ही उस कमरे के प्रकंपन बहुत अधिक शक्तिशाली और विशाल हो गए, और तभी मैंने स्वयं को उस सुंदर मनुष्य के समक्ष खड़े हुए देखा। और जो प्रेम की अनुभूति थी वो ऐसी नहीं थी कि एक दे रहा है दूसरा प्राप्त कर रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव था कि प्रेम चक्राकार था, इसका किसी एक से संबंधित नहीं था, और ऐसा नहीं था कि एक के पास अधिक है दूसरे के पास कम है, वह एक चक्राकार रूप में प्रवाहित हो रहा था। तो स्वर्णिम युग में प्रकंपनों का एक स्तर है जिसमें हम सभी मनुष्य समान हैं। बेशक हम विभिन्न प्रकार के पार्ट प्ले करते हैं, परंतु हम सभी समान हैं, और हर कोई उन प्रकंपनों को महसूस कर सकते हैं, चाहे वे प्रेम, शांति या करुणा के हों। तो यह सब मेरे लिए बहुत परिवर्तन करने वाला रहा। तो मेरे लिए स्वर्णिम युग का महत्व इस बात से नहीं है कि वहाँ चीजें कैसे दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले यह सवाल उठा था कि स्वर्णिम युग में हमें अपने शरीर का भान रहेगा या नहीं, और किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया जिसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि शायद हमें ऐसा लगेगा कि हम सर्वव्यापी हैं, और मुझे ये सिद्धांत, ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि जो भी परिधान या शरीर हमने धारण किया है हम उसके द्वारा सीमा में बंधे नहीं रहेंगे और उसके द्वारा परिभाषित भी नहीं किए जाएंगे। हमारी चेतना बहुत विशाल होगी, और हो सकता है शायद इस समय हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाए। तो खेल जो है वो बाहर नहीं खेला जाएगा। हाँ, भौतिकता तो होगी, लेकिन वह ठोस और भारी नहीं होगी और सारा खेल चेतना के स्तर पर ही खेला जाएगा और आपस में जो संवाद होगा वह सर्वोत्कृष्ट होगा या कहें सर्व सीमाओं से बाहर का होगा। हाँ, भौतिक अभिव्यक्ति होगी लेकिन अधिक महत्व हमारा बेहद की चेतना से होगा। तो यह एक हाल का ही अनुभव है एरिक भाई। वाह, बहुत अद्भुत। क्या दूसरे भी अनुभव हैं जो आपके मन में अभी आ रहे हैं जिन्होंने आपके सम्मुख स्वर्णिम युग के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला हो? कोई विशेष अनुभव वॉडी बहन? हाँ, दूसरा एक विशेष अनुभव था जिसमें कि ध्यान की अवस्था में जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं उनका वर्तमान जीवन के साथ मेल खाना, और वह है माँ के गर्भ में बच्चे का होना, माँ के गर्भ में पल रहे उस भ्रूण और माँ के मध्य बहुत सुंदर संपर्क संबंध होगा। यह अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ध्यान में बैठते हैं और जैसे कि हम बाबा के गर्भ में हैं, हम परमधाम में हैं, सब एक जैसे हैं और सभी के दिल की धड़कन का आपस में मेल हो रहा है और प्रत्येक दिल की धड़कन पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति है। यही एक अनुभव हुआ जो बहुत विशेष था एरिक भाई। यह बात हमें गर्भ में बहुत अद्भुत तरीके से रहने की बात याद दिलाता है और यह बात समझ नहीं आती कि उस समय हम गर्भ महल क्यों कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और पिछले 21 दिनों से हम सभी इन बातों को सुन रहे हैं, ये बहुत रोचक और अद्भुत है और सभी ने बहुत विशेष और विशिष्ट बातों का बहुत विस्तार से ब्यौरा दिया है। जैसे कि हम सभी ने पहेली के एक भाग को पकड़ा हुआ है या पहेली के बहुत से भागों को, तो इतने दिनों से स्वर्णिम युग के बारे में हम विभिन्न लोगों के विचार सामूहिक रूप से सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सभी के मन में क्या विभिन्न विचार उत्पन्न होंगे? जो हम सोचते थे क्या उससे कुछ भिन्न होगा? क्या इससे कुछ महान विचारों को सक्रियता मिलेगी? सामूहिक रूप से स्वर्णिम युग के बारे में इन सब बातों की जो चर्चा हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है बॉडी बहन? मैं चाहूंगी ऐसा हो। एक दिन हम क्लास में पूछ भी रहे थे, उस समय तक बहुत कम इंटरव्यूज आए थे। हमने पूछा कि हर एक का ध्यान किस और अधिक गया, वह भी बहुत रोचक रहा। निसंदेह यह भी बात थी कि आंखों की पलकों पर सोने का होना और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो परंपरागत हिंदू या भारतीय सभ्यता के बिल्कुल अलग हैं। जब मैंने अपनी एक बहुत प्यारी बहन को यह कहते हुए सुना कि स्वर्णिम युग में एक ऐसी अवस्था होगी जब बच्चों के साथ जानवर भी होंगे और बच्चे उन्हें बहुत प्रेम करेंगे, यह मुझे बहुत अलग लगा। तो इन सब बातों को सामूहिक रूप से देखने पर, चाहे भौतिक रूप की अभिव्यक्ति हो या मानसिक सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति हो, और इनको अपने मेडिटेशन में प्रयोग करना है और भविष्य के बारे में और अधिक स्पष्टता होगी, लेकिन उसका अनुभव अभी वर्तमान समय करना है क्योंकि कुछ भी इसके समानांतर नहीं है, क्योंकि अभी का जो अनुभव है वही अभिव्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी, मुझे याद नहीं वो किसका था, कि हाँ स्वर्णिम युग में हम देवता होंगे लेकिन संगम युग पर हम आपस में ब्राह्मण हैं, और यह इस भौतिक स्तर पर है लेकिन हम एक दूसरे के साथ फरिश्ते कब बनेंगे? और हम जानते हैं कि फरिश्ता देवताओं के अग्रवर्ती हैं, तो फरिश्ता बनने का अनुभव कब होगा? जब हम सभी के साथ मिलकर मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हम एक दूसरे को फरिश्ता रूप में देखें, अनुभव करें स्वयं के लिए भी, हमारी दृष्टि में भी और सभी बातों में भी। मैं हमेशा सोचती हूँ, हाँ हम देवता बनेंगे, हम वहाँ जाकर बहुत अद्भुत मनुष्य बन जाएंगे, लेकिन वहाँ चेतना बहुत बहुत सूक्ष्म होगी और उसका अभ्यास हमें अभी करने की आवश्यकता है। एरिक भाई, तो यहाँ पर आप इन इंटरव्यूज के एक मुख्य पहलू को स्पर्श कर रहे हैं और वह है परिवर्तन की प्रक्रिया का विचार, सृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी आपने अभी तक हमारे साथ शेयर किया है, तो किस प्रकार हम वो इंजन बने, वो शक्ति बने जो हमारे अंदर उस परिवर्तन को साकार कर सके। जैसे आपने कहा कि इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के प्रति ऊंची दृष्टि रखनी है, फरिश्तों की दृष्टि रखनी है, तो आपके अनुसार स्वर्णिम युग की आपकी समझ क्या है, आपके अनुभवों के आधार पर जो कि हमें उस महान परिवर्तन को साकार करने में शक्ति प्रदान करेगा। वॉडी बहन, मुझे लगता है प्रेम और यही अंतिम परिणाम होगा। ज्ञान नहीं रहेगा और दूसरी बातें भी नहीं रहेंगी, पढ़ाई नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या रहेगा? अपने अनुभव से मैं जानती हूँ, किसी बात को अस्वीकार करने से या किसी बात का विरोध करने से, ऐसा करने से हम जानते हैं कि प्रेम करने से हम अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं और परिणाम स्वरूप हर बात बहुत मुश्किल अनुभव होती है, हर बात बहुत ठोस अनुभव होती है। चाहे मुझे कर्मों का हिसाब किताब चुक तू करना है या कुछ भी करना है, जैसा कि एक गीत में कहा है, लव इज द आंसर, प्रेम ही उत्तर है और यही संसार है। और यह तथ्य मेरे लिए बहुत अद्भुत है कि स्वर्णिम युग या सतयुग, सत्यता की दुनिया में हम सभी एक जैसे दिखाई देंगे और उस बात की अभिव्यक्ति करने के लिए हमें प्रेम करना सीखना होगा, जबकि इतनी असंख्य भिन्नताएं हैं, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता। तो एक तरीके से स्वर्णिम युग में सब कुछ बहुत आसान होगा, हम सभी एक होंगे। ऐसा नहीं कि हम सभी एक जैसा दिखाई देंगे, क्योंकि हम सभी के प्रकंपनों का स्तर समान होगा। तो वर्तमान समय हमें यही पुरुषार्थ करना है कि अपने प्रकंपनों के स्तर को ऊंचा करना है। तो वर्तमान समय हमारे सामने यह चुनाव है कि चाहे हम प्रेम को चुने। काश मैं कह पाती कि मैं सदा ही प्रेम को चुनती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि उस बात की जागरूकता अवश्य है। या चाहे हम अपने प्रकंपनों का स्तर नीचा कर दें, चाहे संसार को बढ़ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं इस संसार को अभी सिमटना है। तो अपने चेतना के स्तर पर हम सब जानते हैं कि हमें यह करना चाहिए कि हमें इसे विकसित करना है और इसमें सब कुछ समाहित है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आत्मा में सब कुछ है, इसमें चेतना है, प्रेम है, संबंध संपर्क है, और आप अपने अहंकार द्वारा निर्मित सभी बातों का अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप दूसरों के द्वारा अहंकार की जो अभिव्यक्ति हुई है उसको भी आप अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। एरिक भाई, यह पूरी एक प्रक्रिया है। और जहाँ तक भिन्नताओं की बात है, तो ब्राह्मण परिवार में भी बहुत भिन्नताएं हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं, मत हैं। यहाँ तक कि जब हमने स्वर्णिम युग की बात की, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार बहुत विनम्र होता है, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, लेकिन उसी समय हम स्वर्णिम युग के बारे में अपनी विभिन्न मतें प्रदर्शित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी संपूर्ण रीति मालूम है कि सचमुच स्वर्णिम युग में भौतिक स्तर पर क्या होगा। हाँ, हमें कुछ समझ हासिल हुई है, लेकिन संपूर्ण रीति से जानना मुश्किल है, किस प्रकार के ताज होंगे या किस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि इतने विवरण में जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुझे लगता है लोग जो अनुभव शेयर कर रहे थे, वह उनकी भावनाएं थी, उनके अनुभव थे। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की गुणवत्ता स्वर्णिम युग में कैसी होगी, जहां सभी का एकीकरण हो जाएगा। तो पिछले इतने दिनों से हमारे सामने जो विभिन्न आयाम रखे गए हैं, और आपने कहा कि आप उन्हें सुन रहे हैं, और आपने यह भी कहा कि शायद वो आपके सवाल नहीं होते जो पूछे गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने बहुत लोगों से सुने हैं, और ब्राह्मण परिवार में जो मैंने देखा है, मुरली सुनते समय या आपस में बातचीत करते समय जो सवाल हमारे मन में सामूहिक रूप से उठते हैं, वही पूछने की कोशिश की गई है। तो आपके अनुसार कौन से वे सवाल होंगे जो इस समय उपयुक्त होंगे? बॉडी बहन, मुझे लगता है समय का सवाल, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम समय को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वहाँ हम अलग प्रकार से देखेंगे। और हम जानते हैं कि वर्तमान समय वहाँ पहुँचने का एक ही तरीका है, और वह है याद। और उस याद में एक बहुत बड़ा हिस्सा है बाबा की याद, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि अपने भविष्य जन्मों को याद करना। लेकिन स्वर्णिम युग में किसी भी बात को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं यह रिकॉर्ड करना है, यह म्यूजिक, ये बात या दूसरी बात, यह सब ठीक है, लेकिन जब हम कुछ देखते हैं तो उसका भी इससे संबंध है। जैसे कुछ समय पहले मैं किसी ग्रुप का प्रदर्शन देख रही थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उस ग्रुप के दो सदस्यों ने शरीर छोड़ दिया था। तो आप किसी बात को वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन असलियत में वह घटना भूतकाल में घटी थी। लेकिन स्वर्णिम युग में हमें किसी भी प्रकार का दुख या पश्चाताप नहीं होगा। ये सब बातें तो वैसे भी वहाँ नहीं होंगी। वहाँ हर पल नया पल होगा, और हर पल अपने आप में उपयुक्त और पर्याप्त होगा, और हर पल अनंत होगा। हमें इसी प्रकार की भावना का एहसास होगा। हमें किसी बात को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं लोगों के समय के बारे में विचार सुनना चाहूंगी। जहां हम भूतकाल की बातें याद करते हैं, वह अतीत की ललक, उस तरह की सभी बातें। और दूसरा आयाम जो मुझे बेहद पसंद है वह है, यह तो मालूम नहीं कि यह सवाल है, लेकिन यह एक चाइनीज दार्शनिक की बात है। जब हम एक दूसरे से संवाद कर रहे होंगे तो किसी को भी कोई उपहार प्रदान करने की या ग्रहण करने की भावना का एहसास नहीं होगा। बाबा ने भी इसी प्रकार की बात कही है, और यही कारण होगा कि वहाँ किसी भी प्रकार का हिसाब किताब का लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बाबा इस प्रकार जब गैर तरफदार या न्यूट्रल कर्मों की बात करते हैं, तो दूसरों से इस बारे में उनके विचार सुनना बहुत रोचक होगा कि उनको इस बारे में क्या कहना है। एरिक भाई, हाँ बिल्कुल सही, निसंदेह ये प्रोजेक्ट अभी जारी रहेगा। इस बातचीत और चर्चा को ब्राह्मण परिवार से हटकर अब आम जनता की ओर लेकर जाना है और उनके विचार सुनने हैं। परंतु आपको क्या लगता है कि इन विचारों का हम क्या करेंगे? और जब आप इतने विभिन्न प्रकार के विचारों को सुन रहे थे, तो आपको क्या ख्याल आया? और इस समय ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह प्रोजेक्ट अभी सामने आया तो, और मुझे पक्का विश्वास है कि बाबा ने ही इसकी हमें प्रेरणा दी है। आपको क्या दिखाई देता है कि इन सभी विचारों का अब क्या होने वाला है? वॉडी बहन, पिछले हफ्ते की ही बात है, मैं कहीं दूसरी जगह पर थी और हमने इस बारे में चर्चा आरंभ की। वहाँ दूसरी भाषा चलती है, तो किसी ने अपने आप ही पहल की अपने सीनियर से सुनने के अलावा। मैं सुनना चाहूंगी जो नए लोग आए हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि वे सभी बातें सुन रहे हैं जो हम सुनते आए हैं। तो मुझे यह सुनने में बड़ी रुचि होगी कि जो भी नए लोग ज्ञान में अभी आए हैं, इन विचारों को सुनकर उनके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि यह सब सुनकर हमारे अंदर कुछ हलचल तो होने लगी है, और आगे की बातचीत को लेकर मुझ में बहुत कौतूहल है। ऐसा नहीं है कि हमने जो विचार प्रकट किए वो बिल्कुल निश्चित और सत्य हैं, लेकिन निसंदेह उन विचारों से कुछ नया आरंभ अवश्य होगा। यह हमारे अंदर किसी बात का आह्वान अवश्य करेगा। और फिर इस कार्यक्रम का दूसरा भाग, इसका विस्तृत विवरण मैं नहीं जानती, जो कि इन सभी बातों को आम जनता की जागरूकता में लेकर आएंगे, और हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सज्जित कर रहे हैं। और यह हमारे लिए एक चेतावनी है, एक तकाजा है कि हाँ, सचमुच संसार ऐसा हो सकता है। और आप संसार के सामने ये सुंदर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ, सभी मनुष्य एक साथ हो सकते हैं। और मैं जानती हूँ बहुत भारी संख्या में दर्शक हैं। एरिक भाई, तो आपको लगता है कि पहेली का एक हिस्सा गायब है जिसे हमें ढूंढने की आवश्यकता है? तो जो भी अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसको हम एकत्र कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, एक तरीके से समझना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार हम इस दुनिया से उस दुनिया में परिवर्तित होंगे। एक तरह से सपने की दुनिया जो हम यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत देखते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो आपको लगता है कि इन चर्चाओं से पहले का जो हिस्सा गायब है या गुम हो चुका है, वह हम ढूंढ निकालेंगे और हमारे अंदर कुछ प्रकार के विचार सक्रिय हो जाएंगे। बॉडी बहन, इस सारी बात की सुंदरता इस बात में है कि हम सभी को अक्सर रहस्य बहुत पसंद आते हैं, और जब भी हम जानना चाहते हैं तो हम पूरा विवरण जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। और फिर एक दूसरा हिस्सा है जो रहस्य से संबंधित है, और ऐसा लगता है कि पहेली का जो हिस्सा गायब है वह मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह भौतिक रूप से मेरे सामने प्रत्यक्ष होगा, लेकिन शायद सूक्ष्म रूप से। हम सभी ऐसी कहानियां सुनते आए हैं जहां लोग बहुत कुछ मुश्किल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई बहुत लंबी रेस दौड़ रहा है, वह बहुत मुश्किल भी है, लेकिन वह पूरी मेहनत करता है, कोशिश करता है और अपनी मंजिल के समीप पहुंच जाता है, लेकिन रेस खत्म होने के आधी मील दूर ही वह बहुत थका हुआ महसूस करता है, आलस का अनुभव करता है और हार मान लेता है। ऐसा लगता है कि यह कहानी हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ की समानार्थक है, जहां हम नकारात्मकता से अपने आलस का समर्थन करते हैं, स्वयं को इस आध्यात्मिक यात्रा में उपयोगी नहीं रखते, और यह संभव है वह अग्रभाग कहीं दूर ना हो, और ऐसे ही मुझे लगता है होने वाला है। जो कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ जो कुछ हम करते हैं, प्रेम के नाम पर, करुणा के नाम पर, वह सब कुछ इकट्ठा होता जा रहा है। वैसे तो इसे मेरा व्यक्तिगत संग्रह होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सब यही कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जल्द ही हम सभी उस टिपिंग पॉइंट अर्थात वह परिस्थिति जहां से वापस मुड़ना असंभव हो जाएगा, वह अवस्था जल्द ही आने वाली है, लेकिन क्या हम सभी उसके लिए तैयार हैं? यही सवाल है एरिक भाई। मुझे पूरा निश्चय है हम तैयार हैं। बाबा के मन में जरूर कुछ तो होगा, लेकिन मैं आपका और सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो अपने विचार प्रकट करने के लिए इस बी के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हुए और अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल कर रख दिया, और अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट करना यह भी बहुत बड़ा साहस और ईमानदारी का कार्य है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सभी का जिन्होंने ये इंटरव्यू दिए, और उन सभी का जो अनुवाद कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे भी हैं। मैं हृदय से उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो इन इंटरव्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम सभी आगे बढ़ने के लिए विशेष शक्ति दी जा रही ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, हमारी एक परंपरा है, हम अंत करने से पहले छोटी सी मेडिटेशन कमेंट्री से स्वर्णिम का अभ्यास करते हैं, तो क्या आप हमें करवाएंगे? बॉडी बहन, मैं वहां वापस जाना चाहती हूं।
I'm drawn again and again.
मैं बार बार वहां खींची चली जाती हूँ।
To that time.
वह मासूमियत का समय।
And of magic.
वह जादू का समय।
Where the heart.
जहाँ हृदय भरपूर है और खुला है।
Open. And where there's no.
ना विचारों
Time.
और कल्पनाओं के बीच में
Between the thoughts.
कोई समय नहीं है।
In the imagination. And what comes into being.
और क्या मन में आता है?
Like painting
जैसे कि चित्रकला कर रहे हैं,
With vivid colors.
स्पष्ट रंग हैं, सुंदरता है, खुशबू है, और यह सब कुछ इकट्ठा हो जाता है एक नृत्य के रूप में, जिसमें मैं मध्य में हूँ, जिसका मैं अवलोकन कर रही हूँ और अभिव्यक्ति कर रही हूँ, और अगले ही पल
all of the senses
सारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं,
become calm and quiet and I am inside
और मैं अपने भीतर हूँ, वह बिंदु जो शांत
प्योर
और प्रकाश में ऊर्जा है,
साइलेंट एनर्जी, दैट इज द वेरी हार्ट,
और यही रचना का मध्य है, शांति। एरिक भाई, ओम शांति। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया बॉडी, बॉडी बहन। एरिक भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इस प्रोजेक्ट में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और सभी से जिन्होंने ये इंटरव्यू दिए हैं, उनसे सुंदरता और कल्पनाएं निकलवा रहे हैं। पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपको भी इसका बहुत फायदा हुआ है, जैसे हम सभी को आपके इस प्रोजेक्ट में होने से फायदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक भाई, शुक्रिया। मुझे आशा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे कुछ विचारों को सक्रिय करने के लिए मजबूर नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम सभी खुला मन रखते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू बॉडी। स्वर्णिम युग आने से पहले मेरी आपसे मुलाकात तो होनी ही है बॉडी बहन। हाँ, यह बात मुझे बेहद पसंद आई। थैंक यू एरिक, बाय बाय, ओम शांति।